यजमान मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनवृत्य कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययंत निर्मान मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनवृत्य कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययंत। फिर स्मरण रखें कि हम सब लोगों की जो समस्या है वो संसार है। हम जीव भाव को प्राप्त होकर के संसार में आ पड़े। ये संसार जो है वो राग द्वेषात्मक है, हमारी मानसिक कल्पना है। संसार का बंधन भी हमें अनुभव में आता है, लेकिन जब विचार करते हैं, ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, तो मालूम होता है कि संसार है कुछ नहीं। न कुछ होते हुए भी हमारे लिए ये बड़ा दृढ़ है, बड़ी मजबूती से ये संसार है, और ये बंधन भी हमारे लिए बड़ा मजबूत है। इस संसार में व्यक्ति की तुलनात्मक वासनाएं हैं, वासनाओं के अनुसार मन बुद्धि में फिर कामनाएं हैं। कामनाएं हैं इंद्रिय भोगों की, जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं उनके पांच विषय हैं। उन पांच विषयों के भोग की जो कामना है वो है। फिर उस कामना से प्रेरित होकर के उन विषयों को प्राप्त करने के लिए सकाम कर्म है, उन कर्मों के फलस्वरूप विषयों की प्राप्ति होना है। फिर उनका बीच में बाधा पड़े न बाधा पड़े, प्राप्त हो न प्राप्त हो, बने बिगड़े, निरंतर उनके साथ में सुख दुख बना रहता है। इस प्रकार से सुख दुख का संसार जो ये है जीव का जन निर्माणता से चला रहा है। भगवान कहते हैं इससे छुटकारा पाना चाहिए। कैसे छुटकारा पाना चाहिए? इसके प्रति वैराग्य भाव रखना चाहिए। कैसे वैराग्य भाव रखना चाहिए? ज्ञान की दृष्टि से इसको देखो, समझो कि ये संसार है क्या। जैसे जैसे ज्ञान उदय होगा, बात समझ में आएगी, वैसे वैसे संसार के प्रति वैराग्य हो जाए। यदि कोई व्यक्ति स्वयं विचार नहीं करता, शास्त्र को पढ़ ले या कानों से सुन मात्र ले और स्वयं विचार न करे, तो विचार न करने पर हृदय में ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता, वैराग्य भी नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति अपने आप विचार करे कि हमारे मन में वैराग्य क्यों नहीं आता है संसार से, जहां जहां हमारा राग द्वेष है वहां से हमारा छुटकारा क्यों नहीं होता, तो उसे पता लग जाएगा कि उसने विचार नहीं किया। विचार किया होता तो ये समस्या ना आती, वैराग्य जरूर ही हो जाता। क्योंकि विचार से वैराग्य, विवेकपूर्ण विचार से वैराग्य अवश्यंभावी है, उसका परिणाम ही है। इसलिए वैराग्य जरूर आता है, और जब व्यक्ति में वैराग्य आता है तब फिर वह परमार्थ को प्राप्त करने का प्रयास करता है। परमार्थ की प्राप्ति कैसे होती है? खोज से होती है। उस परमात्मा को अपने हृदय में खोजना पड़ता है, और खोजते खोजते अंततः उस परमात्मा तक पहुंच जाता है। उसके पहुंचने का फल क्या है कि फिर वो परमात्मा जैसे परम आनंद स्वरूप परमात्मा है, शांत स्वरूप परमात्मा है, अमृत स्वरूप परमात्मा है, वही गति उसकी प्राप्त हो जाती है और सदा के लिए प्राप्त हो जाती है। वहां से लौट करके फिर नहीं आना पड़ता। तो ये जो संक्षेप में है, जीव की समस्या और फिर वैराग्य रूपी साधना और फिर उसका परिणाम, ये जो तीन बातें बताई, इनका विस्तार अब आगे करते हैं। यहाँ से अगले श्लोक से जो पांचवा श्लोक है इसमें थोड़ा विस्तार देखो। पहले विस्तार करते हैं वैराग्य का। देखो वैराग्य जो है वो व्यक्ति में होना चाहिए। वैराग्य के फलस्वरूप व्यक्ति जो है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। ये पहले जो कह आए हैं उसका और स्पष्टीकरण देते हैं। वैराग्य से तात्पर्य क्या है, कहाँ वैराग्य होना चाहिए, कैसा वैराग्य होना चाहिए, इन प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में है। और फिर जैसे पिछले श्लोक में चौथे श्लोक में कहा था कि फिर उस परमात्मा को प्राप्त करके लौटना नहीं पड़ता, उस परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो वो परम गति को प्राप्त हो जाता है, वो परम गति कैसी है उसका भी वर्णन निहार करते हैं। तब पांचवें श्लोक में जो बातें बताते हैं उनको देखो। साधना की दृष्टि से अपने आप ही इनका विचार करें, अपने मन में इनका मनन करें और अपनी साधना को सुदृढ़ बनावे। इसमें पहली बात निर्माण मोहा, मान और मोह छोड़ देना चाहिए। जित संग दोषा, जो संग दोष हैं आसक्तियां हैं उनको छोड़ देना चाहिए। अध्यात्म नित्या और सदा ही अध्यात्म भाव में रहना चाहिए। निवृत्त कामा और समस्त कामनाओं से निवृत्त छुटकारा कर प्राप्त कर लेना चाहिए। द्वंदी विमुक्ता सुख दुख संगई, जिन द्वंद्वों को सुख दुख कहते हैं उन द्वंद्वों को सबसे मुक्त हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति इतना कर लेता है वो हो गच्छन्ति अमूढ़ा पद मध्यंतर, वो अमूढ़ा मन वो ज्ञानमान व्यक्ति अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है। तो इसके मैंने तीन पंक्तियों में वैराग्य की महिमा सुनाई। तो देखो वैराग्य किसे कहते हैं, कितनी बातें वैराग्य भाव में होनी चाहिए। एक तो निर्माण मोहा होना चाहिए, दूसरा जित संग दोषा होना चाहिए, तीसरा विनिवृत्त कामा होना चाहिए, चौथा द्वंद्वैर विमुक्ता होना चाहिए, और पांचवी बात जब विरक्त हो जाए तब क्या होना चाहिए, अध्यात्म नित्या। बस अध्यात्म नित्या जो है व्यक्ति को फिर अव्यय पद तक परमात्मा तक पहुंचा देगी। अब फिर देखो ये सब विचार जितने भी हैं सब भावात्मक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए यदि ध्यान न दो, गंभीरता से विचार न करो तो इनको समझ में नहीं आते। इसलिए सावधानी से बुद्धि लगा करके इनको समझने की कोशिश करें। निर्मान मोहा, निर्मन मान मोहा, निर्मन नहीं मान मोहा, जिसके समाप्त हो गए हैं, जो जिसके निर्माण मोह समाप्त हो गए हैं वही अव्यय पद को प्राप्त करता है। जित संग दोषा, जिसने संग दोष पर विजय प्राप्त कर ली है वही अव्यय पद को प्राप्त होता है, ये तात्पर्य है। इसलिए निर्माण मोहा, ये मान और मोह जिसने त्याग कर दिए हैं। मान मोह एक है अहम और एक है इदम, संस्कृत में दो शब्द हैं ये अहम, अहम के मन में, और इदम, इदम के मन ये है। जहां अहम है वो अहम के साथ व्यक्ति का अहंकार होता है, और जो इदम है उसमें व्यक्ति का ममत्व होता है। देखो होता है कि नहीं होता है ना, जहां व्यक्ति को अहम की प्रतीत हो रही कि मैं हूं, वहां अहम अहम इति करोति स अहंकारहा, ऐसे बोलते हैं। जहां अपने भीतर अहम अहम मैं शरीर मैं शरीर मैं मन मैं बुद्धि इस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है उस वृत्ति का नाम अहंकार है। और इस अहंकार में क्या होता है, मान, मान के माने अभिमान या सम्मान, ये अहंकार में होता है। यदि अहंकार होगा तो व्यक्ति में मान भी होगा, उसी अहंकार का परिणाम है मान। तो अहंकार तो दो प्रकार का होता है, एक आत्मभाव में अहंकार होता है जो सच्चा अहंकार होता है, एक शरीर प्राण मन बुद्धि में अहंकार होता है ये झूठा अहंकार होता है। ये झूठा अहंकार वृत्त्यात्मक है, वृत्ति की तरह से उत्पन्न होता है और लीन हो जाता है, नाशमान अहंकार है। तो जो मिथ्या अहंकार है इस मिथ्या अहंकार में हम हैं, या हम जो सच्चा अहंकार है उसमें हैं, इस बात का निर्णय मान से होता है। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो ये तात सो परम विरागी, तरण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ये तो हुआ वैराग्य की परिभाषा। वैराग्य के बाद वो व्यक्ति है जो तीनों गुण और उनसे उत्पन्न होने वाली जितनी स्थिति है उसमें कहीं प्रीति न रखे, उसमें कहीं आसक्ति न रखे, और ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, और देख ब्रह्म समान सब माही। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, जब मान न हो तब ज्ञान। तो ज्ञान की पहचान ही मान है। यदि मान है तो मिथ्या अहंकार है, मिथ्या अहंकार है तो सच्चा अहंकार नहीं, सच्चा अहंकार नहीं तो आत्मज्ञान नहीं। अब लगाओ हिसाब, अपने आप अपने भीतर खोजो देखो। और मान पहचान में आ जाता है, मान तो व्यवहार काल में व्यक्ति को जहां उसका सम्मान हुआ, आदर सत्कार हुआ, निंदा स्तुति हुई, तब उसे अपने मान का पता चल जाता है। मान का प्रतीति हो मान की, इसके माने का किसको प्रतीति हो रही है, ये मिथ्या अहंकार को हो रही है। मिथ्या अहंकार में यदि हम बात कर रहे हैं तो ज्ञान में नहीं है, बस यहीं से निर्णय हो गया। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब अहंकार को व्यक्ति छोड़ेगा तब वो गच्छन्ति मूढ़ा पदमभ्यं तद, तब वो ज्ञानमान होगा और परम पद को वो प्राप्त करेगा। ये बात है। इसलिए तो भगवान ने बोला कि निर्माण और मोहा, मोह का संबंध किससे है, जो दूसरी वृत्ति बताई इदम, इदम के माने ममत्व, जहां ये करके है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तो वो हो गया ममत्व। और जब ममत्व हो गया तो उससे ममत्व में क्या होता है, देखो मोह, जहां ममत्व है वहां मोह होगा। मोह के माने अटैचमेंट, आसक्ति। तो अब अपनी आसक्ति को देखो, हमारी आसक्ति कहाँ, तो जहां अपनी आसक्ति वहां ममत्व, और ममत्व कहाँ, जहां इदम। तो अब ये है इदम और अहम दोनों भौतिक हैं, और परमात्मा अभौतिक है, आत्मा अभौतिक है, दिव्य है। अगर हम अहम को और इदम को, इनको पाले रहे और इन्हीं को परिपोषित करते रहे, इन्हीं में बने रहे, तो फिर परम पद को प्राप्त नहीं करते। इसलिए साफ साफ बता देना पड़ता है कि देखो यह मान और मोह को, दोनों को छोड़ देना चाहिए, अहंता को और ममता को छोड़ देना चाहिए, अहम और इदम इन वृत्तियों से ऊपर उठ करके जो दिव्य आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप है, उस परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति में अहम इदम का भेद नहीं है। जब तक अहम इदम का भेद है तब तक हम परमात्मा से दूर हैं। यदि हम परमात्मा भाव को प्राप्त करने उसमें स्थित हों, तो वहां अहम अलग इदम अलग ऐसे करके नहीं हो सकता, माने ये द्वैत नहीं रहेगा। अहम इदम का द्वैत कब तक, जब तक हम मन बुद्धि के स्तर पर हैं और अहंकार की जो वृत्ति है उसके स्तर पर हैं, शरीर भाव में हैं, तब तक अहम इदम का भाव है। इतनी बात तो ये समझ लेना चाहिए इसे निर्माण मोहा के संबंध में। क्यों भगवान कहते हैं कि मान और मोह रहित व्यक्ति को होना चाहिए, तभी वो परमात्मा को प्राप्त करता है। अब जब भगवान ने इतना बताया तो किस लिए बताया, कि व्यक्ति इसका प्रयास करे, इसके लिए ध्यान दे, इधर विचार करे। यह वैराग्य का रूप है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्त्वा के माने क्या है, ऐसे ही ये वैराग्य है। जब वह व्यक्ति मान और मोह का त्याग करे, इनको छोड़े, तभी जो है उसको वैराग्य भाव आएगा। वैराग्य भाव का विस्तार करने के लिए भगवान ने बता दिया। दूसरी बात, जित संग दोषा, संग एक तो बात संग के माने है आसक्ति, अटैचमेंट। संग माने साथ, वैसे निम बोलेंगे संग साथ, साथ के बजाय इसमें संग के माने है, जैसे असंग शब्द है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्त्वा, तो आ हटा दिया तो संग हो गया। माने असंग माने वैराग्य भाव है, और संग माने राग है, अटैचमेंट है, आसक्ति है, तो संग के माने आसक्ति है। और फिर कहते हैं इस संग से जो है वो जित संग, इन आसक्तियों को पर विजय प्राप्त करो, माने आसक्तियों में मत रहो, छुटकारा प्राप्त करो आसक्तियों से। कैसे करो, दोषा, इसमें जो आसक्ति के जो दोष हैं इनको पहचानो, अपनी बुद्धि लगाओ और देखो जहां जहां आसक्ति है वहां वहां दोष है। अगर आपको दोष नहीं दिखाई देते आसक्ति में, इसके माने मूढ़ता है। आगे जो शब्द प्रयोग किया है, गच्छन्ति अमूढ़ा, अमूढ़ा जो मूढ़ नहीं है, जिनको जो मूढ़ नहीं है उन्हीं को ये सब दिखाई देगा कि देखो आसक्तियां हैं और आसक्तियों में दोष है, इन आसक्तियों को त्याग देना चाहिए। उसने भी जो अहंता और ममता के छोड़ने की बात कही, मान और मोह के छोड़ने की बात कही, वो भी जो मूढ़ नहीं है, विचारवान व्यक्ति हैं, उन्हीं को ये बात समझ में आएगी और वही इस मान और मोह को छोड़ेंगे भी। अन्यथा मूर्ता तो सब जगह फैली ही हुई है, शरीर में अहंकार, विषयों में, वस्तुओं में, उनमें ममत्व, आसक्ति, ये तो माया का प्रकोप है, सारे संसार में छाया हुआ है, उससे कोई छूटा नहीं है, सब इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। और इसने बुद्धि खराब कर रखी है, जो सत्य बात है वो बुद्धि को सूझ में नहीं आती। बुद्धि इतनी कुंठित हो गई, जड़ हो गई कि ये सब बातें उसके चित्त में चढ़ते ही नहीं। इसलिए ये कहते हैं कि जो अमूढ़ है, मूढ़ता जिसने छोड़ दी है, समझदारी का के रास्ते पर आ गया है, सही रास्ते पर आ गया है, वो फिर आसक्तियों में नहीं पड़ता, राग द्वेष में नहीं पड़ता, और फिर विनिवृत्त कामा और कामा कामनाओं का से निवृत्त हो गया है, कामनाओं को छोड़ देता है, निष्काम हो जाता है। कामनाओं के त्यागने की बात तो आप सुनते चले आ रहे हो, गीता के प्रारंभ से लेकर के भगवान कामनाओं के त्याग की बात बार बार कहते आ रहे हैं। दूसरे अध्याय से इस कामनाओं का त्याग का स्लोगन शुरू हो गया, वहीं से आंदोलन शुरू हो गया, कामनाओं को छोड़ो। प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्टा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, दूसरे अध्याय में बोल दिए थे। बस उसी के लिए उस वही कामनाओं के त्याग की बात बराबर कहते हैं, अभी तक कहते चले आ रहे हैं, बराबर आगे कहते रहेंगे, जितना 18वां अध्याय तक इन कामनाओं के त्याग की बात कहते रहेंगे। कामना एक मानसिक वृत्ति है, मन में कामना उत्पन्न होती है, तो उस कामना का त्याग करना माने मन में वो वृत्ति मत लाओ। मन में अगर कामना की वृत्ति उत्पन्न होती है तो नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। कामना होती है काम पदार्थ के प्रति, कोई एक वस्तु होती है जिसके प्रति व्यक्ति की कामना होती है, चाहे वो वस्तु शब्द स्पर्श रूप रस गंध हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे इंद्रलोक हो, ब्रह्मलोक हो, ये सब उसके काम में पदार्थ हो सकते हैं। तो जब ये काम में पदार्थ होते हैं और उनमें मूल्य बुद्धि होती है, ये तो बड़े सुखदायी हैं, बड़े काम के हैं, ये तो जरूर प्राप्त होने चाहिए, और देखो सब लोग प्राप्त कर रहे हैं तो हम ही क्यों रह जाएं, हमको भी प्राप्त कर लेना चाहिए, ऐसे जो विचार आते रहते हैं उसका नाम जो है वो कामना है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के मन में ये कामनाएं आती रहती हैं। लेकिन जब व्यक्ति को ये पता चल जाए कि जो ये विषय हैं, इदम पदार्थ हैं, ये भौतिक हैं, जड़ हैं, इनमें सुख है ही नहीं, अज्ञान के कारण से अज्ञानी व्यक्तियों को इनमें सुख भाषित होता रहता है, इसलिए खोखले विषयों की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, इनकी कामना नहीं करनी चाहिए, ऐसा विचार जब सदविचार व्यक्ति की बुद्धि में आ जाए तब उन विषयों में आसक्ति छूटे, जब आसक्ति छूटे तब उनकी कामना छूटे। इसलिए जित संग दोषा, जिनको विषयों में आसक्ति नहीं है, फिर वही फिर विनिवृत्त कामा, वो कामनाओं से छुटकारा भी उसे हो जाता है। तो क्रम देखो इस प्रकार से चलता है, पहले निर्माण मोहा, पहले अहंता और इदंता को समझो, अहंता के अहंकार को समझो, उसमें होने वाले मान को समझो, और फिर इदंता को समझो, इदंता में ममत्व को समझो, ममत्व में मोह को समझो, और फिर जहाँ इदंता है और जहाँ ममत्व है, जहाँ मोह है, समझो विसंग दोष है, उसमें होने के कारण से, आसक्ति होने के कारण से जीवन में नाना प्रकार के दोष आते हैं, दोष ही दुख बन जाते हैं, दोष ही में दुष्टता है। जैसे कोई व्यक्ति दोषवान व्यक्ति, किसी व्यक्ति में दोष होगा तो उस व्यक्ति को आप क्या कहोगे, दुष्ट। दुष्ट क्यों कहते हो, क्योंकि उसमें दोष है, कि बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट मैंने उसमें बहुत दोष है, दोष ही व्यक्ति को दुष्ट कर देते हैं। अगर विषयों में दोष है तो विषय कैसे हुए, दुष्ट हुए, और जो व्यक्ति उन विषयों की कामना करेगा वो कैसा हुआ, वो कड़ा समझदार हुआ, वो दुष्ट नहीं हुआ, वो भी दुष्ट हो गया। इसलिए इतनी जब कह दी तब उनकी कामना के त्याग की बात आती है, इसलिए बोल दिया कि सब कामनाओं का वो त्याग कर दे। मित्र फल भोग विरागा, माने उसको जो है यहाँ से लेकर के अमूत्र मन स्वर्ग तक जितने भी विषय पदार्थ हैं उनकी सबकी गिनती को गिनावे आदि अंत बता दिया। इदम और अमूत्र, इदम माने इस लोक में वर्तमान में यहाँ पर, और यहाँ से लेकर के भविष्य में आने वाले और स्वर्ग लोक तक चले जाओ, वहां तक जितने भी इदम पदार्थ हैं, जो भी सुखदायी आपके पदार्थ होते हैं, वो सबकी कामना जो व्यक्ति को होती है वो सब त्याग देनी चाहिए। इतना है कामना का त्याग के बाद। अब फिर बोलते हैं कामना का त्याग, अब इसके परिणाम, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, वो सुख दुख जो है वो जिन सुख दुख संज्ञा संज्ञा मैंने नाम, जिनका के नाम सुख दुख है, किनका नाम सुख दुख, दोनों का नाम सुख दुख है। इसलिए कहते हैं अभी हम द्वंद को, द्वंदों को ही सुख दुख बताया है। इसलिए जहां कहीं द्वंद शब्द आ गए वहां अपने आप समझ लो कि गीता में भगवान ने द्वंद किसको कहा है, सुख दुख संज्ञा ही उनका नाम सुख दुख है। द्वंद के मैंने जहां दो दो हूं तो एक सुख है एक दुख है, इसलिए सुख दुख ये दोनों नाम जो हैं ये द्वंद के ही नाम है। इसलिए जब ये कहेंगे निर्द्वंद बनो द्वंदातीत बनो तब उसका अर्थ क्या होगा, अपने आप अर्थ लगा लो। इसकी व्याख्या यहाँ पर है, वो इसके माने कि हमें सुख दुख से ऊपर उठना पड़ेगा, सुख दुख की चिंता हम छोड़ दें तब हम द्वंदों से विमुक्त होंगे। और द्वंदों की एक श्रृंखला, श्रृंखला माने एक कड़ी एक के बाद एक द्वंद आते हैं। द्वंदों का प्रारंभ होता है अहम और इदम वृत्ति से, जहां से ये श्लोक शुरू हुआ, अहम और इदम वृत्ति से द्वंद प्रारंभ हुआ, उसी से फिर अहंता और ममता आई, उसी से फिर मान और मोह आए, उसी से फिर राग और द्वेष आए, उसी से फिर राग द्वेष से फिर शुभाशुभ कर्म आए, माने राग द्वेष से विषयों की कामना और फिर उनको प्राप्त करने के लिए शुभाशुभ कर्म, ये शुभाशुभ कर्म आए। शुभाशुभ कर्म की आगे गई कड़ी क्या है, शुभाशुभ कर्म बन जाते हैं पाप और पुण्य। शुभाशुभ कर्म जिस कर रहे हैं तब तो शुभाशुभ कर्म है, और जब चित्त के ऊपर उनका संस्कार पड़ा और संस्कार पड़ के परिपक्व हुए तो बन गए पाप और पुण्य, और जो पाप और पुण्य बन गए, जब पाप पुण्य का परिपाक हुआ तब क्या बन गए, सुख दुख बन गए, ये पाप और पुण्य सुख दुख हो जाते हैं। तो इनको कहते सुख दुख संज्ञा, जिनका के नाम सुख दुख है, यहां तक ये द्वंद्वों की श्रृंखला है एक के बाद एक। अब अगर कोई व्यक्ति कहे कि व्यक्ति कर्म बंधन में बंधा है तो किस कर्म बंधन में बंधा है, उसके दिलीर क्या है, ये द्वंद्व, ये जितना द्वंद्वों की कड़ी है एक के बाद एक, यही एक लंबी जंजीर है जिस जंजीर के द्वारा व्यक्ति संसार के बंधन में, कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। अब बोले कि देखो क्या करना चाहिए, कहते हैं अध्यात्म विद्या, ये साधना है। अध्यात्म विद्या के माने क्या है, व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने अंतरतम में प्रवेश करके विचार करे, विषय तो बाहर है, बाहर से परांगमुख हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए, अपने भीतर देखने लगे। आप देख चुके हो आठवें अध्याय में भगवान ने अध्यात्म शब्द की परिभाषा दी थी। अध्यात्म के माने क्या है, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, ये भगवान का वचन है, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, स्वभाव को ही अध्यात्म कहते हैं। स्वभाव को माने स्वभाव, जैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये स्वभाव है, और अपने अंदर ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सब अपने अंदर है। इसलिए अध्यात्म जो है, अध्यात्म वृत्ति के माने अपने अंदर देखो, अपने अंदर देखो कि प्राण क्या है, कर्मेंद्रियां क्या है, ज्ञानेंद्रियां क्या है, मन बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, चित्त क्या है, ये कैसे संचालित होते हैं, इनका विभाजन किस प्रकार से, यह प्राण देखो, क्रिया शक्ति शरीर में सब में व्याप्त है, ये प्राण क्या है, क्रिया शक्ति क्या है, कहाँ कहाँ शरीर में ये क्रिया शक्ति कार्य कर रही है, कितने कितने रूपों में कार्य कर रही है। कोई कहता है कि 5 प्राण है, कोई कहता है कि 10 प्राण है। अब अपने आप को देखो, आपको 10 दिखाई दे रहे हैं कि 5 दिखाई दे रहे हैं कि 15 दिखाई दे रहे हैं कि 1 दिखाई दे रहा है, ढूंढो अपने आप। जब अपने आप ये सब देख रहे होगे तो ये अध्यात्म वृत्ति है, अब ये आध्यात्मिक साधना होगी, क्योंकि हम अपने आप अपने भीतर ही सब देख रहे हैं, आध्यात्मिक साधना है। कर्मेंद्रियां आपके हैं, आप कर्मेंद्रियों को पहचानो कि कर्मेंद्रियां क्या है, स्थूल शरीर में कर्मेंद्रियां हैं कि सूक्ष्म शरीर में कर्मेंद्रियां हैं। जब शरीर छोड़कर के जीव चला जाता है तब कर्मेंद्रियां शरीर में रहती कि नहीं रहती हैं, जब शरीर छोड़कर के जाता है जीव के साथ कर्मेंद्रियां जाती कि नहीं जाती हैं, ये सब विचार करो। कर्मेंद्रियां कितनी हैं, उनके द्वारा कौन कौन कर्म होते हैं, उन इंद्रियों के कौन कौन देवता हैं, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग कार्य क्यों हैं, उनके ऊपर उनका संबंध आकाश से लेकर के पृथ्वी तक पंचभूत पंच महाभूत सूक्ष्म पंच महाभूतों से कर्मेंद्रियों का क्या संबंध है, ये संवाद में देखते हैं। इनका सबका बार बार विचार करो, बार बार अनुचिंतन करो कि जैसे इस प्रकार से सूक्ष्म पंच महाभूत हैं, सूक्ष्म पंच महाभूत अपंचीकृत पंच महाभूत हैं, अपंचीकृत पंच महाभूतों के प्रजसांश से कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई है, अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्वांश से ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न हुई है। देखो उनका संबंध है, और देखो सब उधर देखो, पंच महाभूतों को भी पहचानो और पंच महाभूतों से उत्पन्न ज्ञानेन्द्रियों को पहचानो और उनके दोनों को संबंध को पहचानो। ऐसे ही अपंचीकृत पंच महाभूतों के रजसांश को देखो और फिर उनसे उत्पन्न हुए कर्मेंद्रियों को देखो और देखो कि कर्मेंद्रियों का उस रजसांश से किस प्रकार का संबंध है, किस इंद्रिय का संबंध किस पंच महाभूत से है, उसमें से आकाश से है कि वायु से है कि अग्नि से है कि जल से है कि पृथ्वी से, किनसे उनका संबंध है, ये तालमेल अपने भीतर बैठा लो और स्पष्टतम देखो, ज्यादा से ज्यादा सफाई के साथ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे कि देखो इनका संबंध इस प्रकार से, इसलिए ये सब इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई मशीन होती है, ऊपर से तो ऊपर से उसके बॉडी ढक दी गई, लेकिन मशीन के भीतर तमाम पुर्जे तमाम जने कितने पुर्जे उसके भीतर चलते हैं काम करते हैं। जैसे मशीन खोलो तो उसके भीतर पुर्जे देखो, तो मशीन की जानकारी उनके पुर्जों को समझो, उनके फंक्शन को समझो, कौन पुर्जा क्या फंक्शन करता है। इसी प्रकार से देखो अपने शरीर के भीतर ये सब जितने भी हैं, ये कल पुर्जे क्या क्या अपने फिट हैं, ये अध्यात्म विद्या है। जब अपने आप देखने लगे कि कर्मेंद्रियां क्या है, प्राण क्या है, ज्ञानेंद्रियां क्या है, मन बुद्धि क्या है, तो आप अध्यात्म विद्या सीख रहे हो। उसी के साथ आप देखो कि ये मन बुद्धि की वृत्तियां क्या है, चित्त की वृत्ति क्या है, अंतःकरण क्या है, अंतःकरण के चार ये फंक्शन नाम किस प्रकार के हैं, इनके क्या क्या फंक्शन है, बुद्धि क्या है, बुद्धि की सीमाएं क्या है, बुद्धि के कार्य क्या है, बुद्धि कितने प्रकार के कार्य करती है, विवेक करती है, स्मरण रखती है, खोज करती है, तमाम प्रकार के कार्य बुद्धि करती है, तो कौन कौन से कार्य बुद्धि करती है, उन सब कार्यों को ढूंढो पता लगाओ, ये सब अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म नित्या, नित्या माने रोज बैठे ही कर रहे हो, क्या कर रहे हो बैठे हुए, सोच रहे हैं कि बुद्धि कितने प्रकार के कार्य करती है, कहां कहां तक जाती है, क्यों इस प्रकार के कार्य करती है। अब आप विचार कर रहे हो कि एक व्यक्ति की बुद्धि ऐसी है, दूसरे बुद्धि की दूसरी है, तीसरे व्यक्ति की तीसरी प्रकार की बुद्धि है, ये बुद्धियां नाना प्रकार की क्यों है, सबके निर्णय एक जैसे क्यों नहीं होते। जब एक व्यक्ति ने सोचा कि यही सही है तो सब लोग क्यों नहीं सोच लेते हाँ यही सही है, एक व्यक्ति कहता है ये सही है, दूसरा कहता सही है, ऐसा नहीं है, हम ऐसा समझते हैं, दूसरा कहता हम ऐसा समझते हैं, आखिर क्या कारण है। जो अध्यात्म विद्या को जानता है वो जानता है कि सबकी समझ एक सी हो ही नहीं सकती, अलग अलग अवश्य होगी, तो वो कभी किसी को दोष नहीं देगा, वो समझेगा कि हमारी जैसी बुद्धि थी तैसे हमने सोचा और दूसरे बिचारे की जैसी दूसरे की बुद्धि थी वैसा उसने सोचा, सबकी बुद्धियां ऐसी थोड़े होते, इसलिए कोई झगड़ा नहीं करता है। अपनी बुद्धि की बात ठीक है लेकिन दूसरा नहीं मानता उस बात को, इस प्रकार से बुद्धि के भी भेदों को देखेगा और फिर ये देखा कि आखिरकार ये बुद्धि भेद है क्यों, सबकी बुद्धि एक सी क्यों नहीं है। जब सबकी बुद्धि जो है अपंचीकृत पंच महाभूतों के सत्वांश के पुंजीभूत होने से उत्पन्न हुई अंतःकरण कहलाता है, उसी का एक फंक्शन बुद्धि है, तो सबकी बुद्धि एक सी होनी चाहिए, लेकिन सबकी बुद्धि एक सी क्यों नहीं, अब खोज रहे हैं क्यों नहीं क्यों नहीं, तो पता लगा कि एक कारण शरीर है, उसमें सत्वगुण है, उसमें रजोगुण है, उसमें तमोगुण है, और सब में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण एक समान नहीं होते, किसी के कम होते हैं किसी के ज्यादा होते हैं, किसी में सत्वगुण ज्यादा है किसी में रजोगुण ज्यादा है किसी में तमोगुण ज्यादा है। अब कोई व्यक्ति दो व्यक्ति आश्रम में आए और आश्रम सब देखा, तो एक व्यक्ति ने के मन में आया कि इस आश्रम के बनने में कितना पैसा लगा होगा, कितना समय लगा होगा, किसने इसे बनवाया होगा, एक व्यक्ति तो ये सोचने लगा। दूसरा व्यक्ति ये सोचने लगा कि आश्रम क्यों बनाया गया, यहाँ के लोग रहने वाले क्या करते हैं, कि इस आश्रम में रहने पर लोगों को शांति प्राप्त होती कि नहीं प्राप्त होती है, कुछ साधना करने के लिए सुविधाएं हैं कि नहीं सुविधाएं हैं, दूसरा व्यक्ति वो सोचने लगा। दोनों की सोच जो है ये दृष्टि ये अलग अलग क्यों है। मान लो यहां पर एक कोई कैंप लगा, कैंप लगने में लोग कुछ लोग आए, कम आए ज्यादा आए, कुछ हुआ वहां कार्यक्रम चला, तब दो दृष्टियां हैं, एक दृष्टि तो ये कि बताओ जो ये कैंप लगा इसमें कितने पैसे आए, और दूसरी दृष्टि ये है कि इस कैंप में जो लोग आए उनको क्या लाभ हुआ। एक एक बात सोच रहा, दूसरा दूसरी बात सोच रहा, क्या कारण है पता लगाओ। दोनों ये कई प्रकार से कहने सोचे, सब आए यही कहें कि कैंप में कितना फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, सब ये कितने पैसे आए, हर कोई यही सोचे। करेगा ऐसा नहीं, वो दूसरा व्यक्ति पैसे का ध्यान नहीं देगा। उसी तरह ये देखा कि साधना कितनी हुई, लोगों को लाभ कितना हुआ, मार्गदर्शन कितना प्राप्त हुआ, प्रेरणा कितनी प्राप्त हुई, आगे वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी साधना आगे चली कि नहीं चली। यहाँ आकर के ध्यान साधना की और यहाँ से चले गए, उसके बाद वो ध्यान अब करते होंगे कि नहीं करते होंगे, उनको ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो पता लगाना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो क्यों उन्होंने छोड़ दिया, इसका पता लगाना चाहिए। इधर उधर ध्यान जा रहा, क्यों बरकर ध्यान जा रहा, अरे गए जो पैसा देने तो दे गए, बाकी जाने तो जान गए, पैसा दे सकते ना इसकी बात। अब बताओ इन दो दृष्टियों में क्यों अंतर है, क्या आप देखोगे कि इनकी दृष्टियों का जो अंतर होता है, या बुद्धि का जो अंतर होता है, उसके पीछे क्या है। व्यक्ति के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, ये सब अज्ञात विद्या है। ऐसा नहीं कि अज्ञात विद्या नहीं है, ये सब अज्ञात विद्या ही है। अब उसके पीछे व्यक्ति का सत्वगुण जब व्यक्ति में होता है तब बुद्धि कैसी बनती है, सत्वगुण जब व्यक्ति में होता है तब कैसा कैसा स्वभाव होता है, सप्तगुण में क्या अच्छाइयाँ हैं, रजोगुण में क्या बुराइयाँ हैं, तमोगुण में क्या बुराइयाँ हैं, हैं इनके सप्तगुण के रजोगुण तमोगुण के क्या लक्षण हैं, और फिर अपने भीतर देखें हमारे भीतर सप्तगुण कितना है, रजोगुण कितना है, तमोगुण कितना है, अगर तमोगुण है तो क्यों नहीं छूटता, रजोगुण है तो क्यों नहीं छूटता, इसके छोड़ने के लिए क्या साधना हमको करनी चाहिए। अब शास्त्र में साधना बताई गई, तमोगुण छोड़ने के लिए साधना करो, रजोगुण छोड़ने के लिए साधना करो, अगर हमारी समझ में आ गया कि सप्तगुण हमारे अंदर होना चाहिए तो आप हमें जो साधना जो तमोगुण रजोगुण छोड़ने के लिए करनी चाहिए हम करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सब अध्यात्म विद्या है। अब व्यक्ति सत्वगुण ही अपने आप को बनाना चाहे तो जब व्यक्ति इस प्रकार से ये सब करता जाएगा तो इसको एक सीधा रास्ता मिल गया, सही रास्ता मिल गया। तो अब देखो एक आचार्य ये कहते हैं कि गच्छन्त अमूढ़ा, अमूढ़ा के माने क्या है, अमूढ़ा के माने हुए हैं जो रास्ता जीवन में भूले नहीं है, जीवन का जो सही रास्ता उनको मिल गया है और सही रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका नाम है अमूढ़ा। मूढ़ व्यक्ति कौन है, जो रास्ते से भटक गए हैं। ये संस्कृत का प्रयोग है, संस्कृत की भाषा को अगर सीखो तो भाषा के उसको भी सीखना पड़ता है। मूर्ता के माने केवल इतना नहीं है कि अज्ञानी है बस, मूर्ता के माने रास्ता भटक जाना, जैसे किंग कर्तव्य विमूढ़, इसका अर्थ क्या है, आप समझोगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा जिसकी समझ में नहीं आता वही किंग कर्तव्य विमूढ़। अरे किंग कर्तव्य विमूढ़ के माने हमें काम करने के लिए कौन सा ट्रैक पकड़ना चाहिए, वो नहीं समझ में आता, उसे हट गए दूसरी तरफ चले गए, तो ये हो गया किंग कर्तव्य विमूढ़। वैद्य शास्त्र में एक शब्द आता है गर्भमूढ़ा, पेट में बच्चा है और वैद्य क्या कहता है कि बच्चे होने में तकलीफ हो रही है, क्यों हो रही है कि गर्भमूढ़ा, गर्भ जो है वो बालक जो है पेट में है वो रास्ता भूल गया। तो हम मूल शब्द का प्रयोग करते हैं गर्भमूढ़ा है? तो अब मूल शब्द के तात्पर्य जो है भाव को समझो क्या, तो ये समझ में आएगा कि जिसको जीवन का सही रास्ता मालूम है वो मूढ़ नहीं है, और जो सही रास्ता से भटक गया भूल गया। अध्यात्म का जो रास्ता है कि अपने आप अपने भीतर देखें, मनुष्य का शरीर ही इसलिए प्राप्त हुआ कि हम अपने आप विचार कर सकते हैं कि प्राण क्या है, कर्मेंद्रियां क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, कैसे बने हैं, कैसे कार्य करते हैं, वासनाएं किस प्रकार की हैं, कर्म किस प्रकार के हैं, कर्मों का परिणाम क्या होता है, कैसे वासनाएं बनती हैं, कैसे वासनाएं छूटती हैं, इन सबको जाने, इनकी साधना करे, साधना करके फिर इस चक्कर से जो जन्म का चक्र जीव भाव छुटकारा करके परमात्मा को प्राप्त करे। अगर ये रास्ता उसे समझ में आ गया है तो उसी रास्ते पर ट्रैक पर सीधा चला जा रहा है, इधर उधर भटकता नहीं है, तो अमूढ़ा। अगर सीधे रास्ते में व्यक्ति होगा तो कहां पहुंचेगा, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति भटक गया रास्ते तो क्या होगा, अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा, झाड़ी झंकार में भटकता रहेगा। इसलिए कहते हैं अमूढ़ा पदम अव्ययम गच्छते गच्छन्ति गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम, तत् उस अव्यय पद को यह अमूढ़ लोग ही प्राप्त करते हैं, वही पहुंचते हैं। इस रास्ते में भटक जाना क्या है, जो मान लोह में पड़ गए भटक गए, जो संग दोष में पड़ गए वो भटक गए, जो संसार के विषयों की कामनाओं में अटक गए वो भटक गए, जो इस प्रकार के सब भटके हुए लोग, जब इनसे जिनको छुटकारा हुआ और जिन्होंने अपने अंदर अपनी इस मशीनरी को समझा कि हमारा आंतरिक स्वरूप क्या है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस रास्ते में भटक जाना क्या है, जो मान मोह में पड़ गए भटक गए, जो संग दोष में पड़ गए वो भटक गए, जो संसार के विषयों की कामनाओं में अटक गए वो भटक गए, जो इस प्रकार के सब भटके हुए लोग, जब इनसे जिनको छुटकारा हुआ और जिन्होंने अपने अंदर अपनी इस मशीनरी को समझा कि हमारा आंतरिक स्वरूप क्या है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उन्होंने समझ करके उसी रास्ते पर चले तो उनका रास्ता सही हो गया। इसलिए दोनों रास्ते जाना चाहिए, जीवन का गलत रास्ता भी समझना चाहिए, जीवन का सही रास्ता भी समझना चाहिए। गलत रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है, इसको पहचान करके सही रास्ता को पकड़ना चाहिए।